بالظبط. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں یہ بیسیکلی بیچ کی کچھ آیات تھیں جو ہم سیٹ پڑھ رہے ہیں اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے، وہ ہے آیت نمبر 51 سے لے کے 73 تک سورۃ الانبیاء کی. تو ان کا ترجمہ خلاصہ تفسیر پڑھ لی تھی اور ہم ان کے معرف و مسائل پڑھ رہے تھے. اس میں جو آخری ہیڈنگ یا عنوان وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارِ نمرود کے گلزار بن جانے کی حقیقت. تو یعنی جو آگ جو ہے گلزار بن گئی، یعنی بہت ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. تو اب اس کے بارے میں کچھ اعتراضات جو فلاسفرز نے کیے یا سائنسدانوں نے کیے، تو ان اعتراضات اور ان کا جواب، یہ ساری ڈسکشن جو ہے پچھلی کلاس میں کافی تفصیل سے ہم نے کر لی تھی. کسی کو اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب ڈالا جا رہا تھا ان کو آگ میں، تو ساری مخلوق نے ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اجازت دی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اب میرے خلیل کو مدد کی آفر کر دو. تو سب نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا. اب یہ سارا کام جو ہو رہا ہے نا، یہ سارا کام جو ہے وہ عالم خلق میں ہو رہا ہے یا آسمانوں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دنیا کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام وہ ہوا میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہے بہت ہی مختصر سا وقت ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر یا اس سے تھوڑا سا چند سیکنڈز کے اندر کسی شخص کو جب آپ پھینکتے ہیں تو وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے، چند سیکنڈز کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنے سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ اتنا کچھ ہو گیا آسمانوں کے اندر، تو یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم آسان طریقے سے ایسے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو آگے فائدہ بھی دے گا، کیونکہ بچوں کو بھی آپ سمجھا سکتی ہیں، کیونکہ بچے تو اس طریقے سے بڑے غور سے باتوں کو سنتے ہیں اور پھر وہ آگے سے سوال بھی کرتے ہیں. ہم تو اکثر ہوتا ہے نا کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، یا ہم کسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو ہماری تو توجہ ہی اتنی زیادہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے، بندہ کر کیا رہا ہے. دیکھیں بچے، اگر آپ نے ان کو محفوظ رکھا ہو، اگر آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کری ہو ویڈیو گیم سے، ٹی وی اسکرین سے اور تماشوں سے، اس قسم کے فضول قسم کے تماشوں سے اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر لینا، تو پھر بچوں کی پاور آف آبزرویشن، جو مشاہدے کی قوت ہوتی ہے نا، وہ برقرار رہتی ہے، وہ سلامت رہتی ہے، اور پھر وہ ایسے چیزوں کا مشاہدہ کر پاتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی ویڈیو گیمز اور ٹی وی اسکرین سے حفاظت کری ہوتی ہے. अगर ये हिफाजत ना करें तो आपके बच्चे भी वैसे हो जाएंगे जैसे आप खुद हैं। ठीक है, हम कैसे हैं, हम जो है वो हर वक्त स्क्रीन के तमाशे, चाहे वो हलाल तमाशे, सो कॉल्ड हलाल तमाशे हो, चाहे वो हराम तमाशे हो, लेकिन हर वक्त स्क्रीन के ऊपर है ना। तो इससे ना इंसान की जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो उसका फोकस होता है ना, वो बिल्कुल मिलिया मेट हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है उसका। अब वो किसी बात पे फोकस नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत मेहनत करेगा, बहुत कोशिश करेगा, तब थोड़ी सी फोकस करके उसको कोई बात समझ में आएगी। ठीक, तो कम अज कम बच्चों की तो हिफाजत कर लेनी चाहिए ना। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे मुतबादल गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए बेशक, ठीक है, लेकिन उन एक्टिविटीज में लगा लेना तो उनको स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको वीडियो गेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद हैरान रह जाएंगी कि बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, है ना, बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं। अब हमारे यहाँ पिछले दिनों जो है ना वो तरावी हो रही थी, तो तरावी हम लोग खुद करते हैं क्योंकि यहाँ पे मस्जिदों में तो तरावी होती नहीं है, 8 रकअत से ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, तो इस वजह से घरों के अंदर तरावी का इंतजाम किया जाता है। तो अब माशाल्लाह हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी, 5 साल के बच्चे भी हैं, 6 साल के बच्चे भी हैं, 7 साल के भी हैं, और फिर उनमें 7-8 साल के बच्चे जो हैं वो तो फिर माशाल्लाह कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिफ्ज भी कर रहे हैं, और उनसे बड़ी उम्र के बच्चे भी, तो खूब सारे बच्चे माशाल्लाह तरावी में साथ होते थे। तो अब हम देख रहे हैं कि जी ये जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, तो इनके पास जब तरावी के दरमियान गैप आता है ना, 4 रकअत के बाद अब थोड़ी देर के लिए बैठता है ना, जिसको तरवीहा कहते हैं, तो उस गैप के अंदर बच्चों को तो कुछ एक्टिविटी चाहिए। बड़े तो चले तस्बीह करने लग गए या पानी वानी पीने लग गए, बच्चों को तो कोई एक्टिविटी चाहिए ना। तो अब वहां पर कोई गेम तो था नहीं, कोई खेल तो था नहीं, है ना, क्योंकि सफाई करके रखी होती है भाई तरावी के लिए, वो कनातें बिछाई हुई हैं, चादरें बिछाई हुई हैं, तो वहां पर खेल खेलने की सामान को थोड़ी रखेंगे। तो हमने देखा कि वो जो पानी की बोतलें थी ना, जो कि बड़े लोग पी पी करके खाली कर रहे थे, तो उन बच्चों ने उन पानी की बोतलों से खेलना शुरू कर दिया, और उनके जो है ना वो मीनार बनाने शुरू कर दिए, है ना। अब 2 मीनार बना लिए, 1 मीनार जो है वो टूट गया, फिर दोबारा से मीनार बना रहे हैं। तो मैंने अपने बराबर में बैठे हुए साथी से कहा कि इन बच्चों को किसी वीडियो गेम की, किसी फोन की, किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है अपने आप को बिजी रखने के लिए। देखो ये कैसे क्रिएटिव है कि ये जो अवेलेबल चीज होती है ना उसी से खेलना शुरू कर देते। और अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में यही होता है कि क्योंकि स्क्रीन के तमाशों को बंद करके रखा हुआ है, रोक करके रखा हुआ है, अब बच्चे ऐसे ऐसे गेम खेल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों के बच्चे जो होते हैं तो उनके यहाँ भी स्क्रीन नहीं होती भाई, इसके ऊपर टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है ना, तब कहीं जाकर के ऐसा हुआ, ये कोई थोड़ी सी पैदाइशी तौर पर ऐसा हो गया राइट कि आसमान से जो है सारे के सारे टपक पड़े एकदम से ऐसे लोग, नहीं, वक्त लगता है ऐसे लोगों को इकट्ठा करने में, ऐसे लोग एक दूसरे के करीब आकर रहना शुरू होते हैं। तो अब उनके बच्चे हमारे घर में खेलने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो खेल रहे हैं, और यानी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब एक ही कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई छुपने की जगह भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना छुपने का अंदाज बना लिया, और कोई जगह नहीं मिल रही छुपने के लिए, तो आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके वो समझ गए कि हम छुप गए हैं। ठीक है, और एक जो है वो जिसने पकड़ना है आकर के, तो वो बोल रही है कि जी अब मैं आ जाऊं, दूसरी बच्ची जो है ना वो अपने आप को दुबक करके कहीं पे छुपा करके बैठी हुई है, वो कह रही हाँ आ जाओ, अब उसके आवाज से भी पता चल रहा है कि हाँ भी वो इधर छुप के बैठी हुई है, लेकिन खेल रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे, खेल रहे हैं। 2 बच्चे भी मिल जाए, अच्छा 2 बच्चे ना भी हो, अकेला बच्चा भी हो ना, वो भी किसी चीज से खेलना शुरू कर देता है। ये जो है ना कि बच्चे बोर हो जाएंगे तो उनको टीवी से महरूम ना करो, बच्चे बोर हो जाएंगे उनको वीडियो गेम से महरूम ना करो, तुमने अपने बच्चे की क्या गत बना के रखी हुई है, तुम अपने बच्चे के ऊपर जुल्म कर रही हो। ये जो बातें हैं ना सुन लीजिए, ये सिर्फ शैतान की बातें हैं, और ये सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ इसलिए शैतान दिलों में डालता है ताकि बच्चे बर्बाद हो जाएं, बच्चे किसी काम के काबिल ना रहें, बच्चे किसी काम के काबिल ना रहें। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो है ना वो इस मखमसे के अंदर मुब्तला हैं, और खुद भी खराब होते हैं, अपने बच्चों को भी खराब करते हैं, और दूसरे लोग जो कि अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं ना, उनके भी कान भरते रहते हैं हर वक्त, उनका भी दिमाग खराब करते रहते हैं हर वक्त, क्या कर लिया है तुमने अपने बच्ची के साथ, तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो, तुम अपने बच्ची को बिगाड़ रही हो, ये बिगाड़ नहीं रही, मतलब बर्बाद कर रही हो, तुम उसको दुनिया की एक अनोखी मखलूक बना रही हो। भाई अनोखे मखलूक तो आप हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी थी, अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें अता फरमाई थी, आप उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि उनको जो है वो अपने और अपने औलाद के नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अनोखा तो अनोखे तो आप हो ना, अनोखे तो आप हो ना, ना ये कि जो अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह की अतात में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है वो अनोखा हुआ। कौन अनोखा हुआ इधर, राइट? और फिर उधर से जो है वो ऐसे लोग जो है जो कि नेकी की जिंदगी गुजारने वालों को अनोखा कहते हैं, फिर वो अपने आप को भी बड़ा नेक समझ रहे हैं। हम तो जी अल्लाह के बड़े जबरदस्त बंदे हैं और हम तो इबादत भी करते हैं और हम तो उमरे भी करते हैं और हम तो फलाने भी करते हैं और हम तो ढिमकाने भी करते हैं, राइट? भाई आपने अल्लाह की नेमतों का तो शुक्र अदा नहीं किया, बाकी आप जाकर के जो इधर उधर के नफली अमाल कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हैसियत नहीं है उन नफली अमाल की अगर आप अल्लाह की बुनियादी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन के को पकड़ के रखे हुए हैं ना, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के दीन पर चलने की, अपनी औलाद को चलाने की, वो मुस्तहकम बुनियादों पर खड़े हैं और वो बिल्कुल मुतमइन रहे, बिल्कुल मुतमइन, बिल्कुल यकीन पुख्ता रखें अपना कि वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अपने मशायख से पूछ करके, अपने बड़ों की सरपरस्ती के अंदर वो नेकी के ऊपर जमे हुए हैं, कोई उनको उस रास्ते से ना हटा पाए, किसी की बातें जो हैं वो आपको डाउट में मुब्तला ना कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर इतना पक्का इस्तकामत होनी चाहिए और ये इस्तकामत जो है ना ये खाली हवा में भी नहीं आती कि भैया मैं इस्तकामत वाला हूँ, मैं इस्तकामत वाली हूँ, ऐसा बोलने से इस्तकामत नहीं आती। इस्तकामत आती है जब इंसान के पास इल्म हो, जब इंसान को पता हो कि वो जो ये काम कर रही है वो क्यों कर रही है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या फायदे हैं, और अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ये इल्म होता है, इसको इल्म कहते हैं। इल्म से इस्तेकाम आता है, इल्म से इस्तेकामत आती है। और जो लोग बगैर इल्म के ऐसी नेकी का काम करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, और उनको पता कुछ नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, कुछ पता नहीं है उनको, तो उनको जो है ना वो बहकाना शैतान के लिए और शैतान के एजेंटों के लिए इंतहाई आसान होता है, ठीक है। इस वजह से इल्म हासिल करें कि दीन पे चलना है, कैसे चलना है, सिर्फ कैसे नहीं चलना, हम कैसे चलने का तो इल्म फिर भी हासिल कर लेते हैं, क्यों चलना है का इल्म हम हासिल नहीं करते, क्यों चलना है का इल्म हम हासिल करते ही नहीं है, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। इसी वजह से हम हर वक्त जो है ना डामाडोल रहते हैं, हर वक्त शेकी रहते हैं, क्योंकि हमें क्यों का जवाब नहीं आता। और क्यों का जवाब नहीं आता ना, तो इसकी वजह से फिर एक और बड़ा नुकसान क्या होता है कि बच्चे तो पूछते हैं क्यों, अम्मी क्यों मैं ऐसा करूं, अम्मी क्यों मैं ऐसा नहीं करूं, बच्चे तो पूछेंगे। अब अम्मी को क्यों का तो जवाब ही नहीं आता, राइट? अम्मी को कैसे का जवाब तो चलो आता है, लेकिन क्यों का जवाब अम्मी को नहीं आता, तो अम्मी साहिबा जो है वो कोई जवाब ही नहीं पाते, तो आखिर आगे से अम्मी ने यही जवाब देना होता है, बस मैं कह रही हूं ना इस वजह से करो। और ये जो जवाब होता है ना, ये बच्चे के लिए काफी नहीं होता, ये बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर, एक तो दीन पे चलने में इस्तकामत होनी चाहिए पक्का, और फिर क्यों का जवाब आना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी औलाद के लिए, यू हैव टू नो व्हाई, ठीक है। अब किसी ने, कुछ लोगों ने डायरेक्ट मैसेजेस लिखे हुए थे कि बच्चों को कितना प्ले टाइम देना चाहिए। बच्चों को प्ले टाइम जो है वो उनकी एज के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है ना। जितने छोटे हैं उतना ज्यादा प्ले टाइम होगा और उतना कम स्टडी टाइम होगा। जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं ना, तो उनका प्ले टाइम जो है वो कम होता जाएगा और स्टडी टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टडी टाइम है ना, इसको बढ़ाना तो है और प्ले टाइम को कम करना है, लेकिन ये जो स्टडी टाइम है इसके अंदर दो चीजों का बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखने की जरूरत है, बल्कि नॉर्म जो बन चुकी है ना हमारे लकीर की फकीरी, स्टडी के अंदर, स्टडीज में हमने लकीरी की फकीरी स्टार्ट करी हुई है, इस लकीरी की फकीरी को तोड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। ये नहीं कि स्टडी छोड़ देने की जरूरत है या स्टडी ना करने की जरूरत, नहीं, स्टडी तो करनी है भाई। इल्म कैसे आएगा, इल्म कैसे आएगा, पढ़ करके आएगा, इकरा, ठीक है ना। तो पढ़ना तो है, बच्चों को भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, लेकिन दो चीजें, वो क्या? नंबर वन नियत, ठीक है, नियत, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पार्टी टाइम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, है ना, दुनिया के अंदर जो है वो अपना नाम बनाने के लिए, लोगों के सामने धाक बिठाने के लिए, ठीक है, लोगों पर जुल्म करने के लिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं बड़े बन जाए ताकि अब छोटों को जो है ना वो अपने उंगलियों पर नचाएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह की रजा की खातिर और इंसानों की खैर ख्वाही बेहतर अंदाज से कर सकें, शैतान का बेहतर अंदाज से मुकाबला कर सकें, ठीक है, और इज्जत के साथ हलाल रिस्क कमा सकें, ये रीजंस हैं हमारे पढ़ने की, ठीक है ना, दीन की खिदमत कर सकें, फितनों का मुकाबला कर सकें, ये नीयतें हैं हमारे पढ़ने की, ये नीयतें बच्चों को बतानी होंगी, नंबर वन नीयत। और दूसरी चीज क्या है कि कंटेंट क्या उनको आप पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट यानी जो मवाद पढ़ा रहे हैं ना, ये मवाद जो है कोई हराम या बेहयाई वाला मवाद तो नहीं इस्तेमाल कर रहे उसके लिए, ठीक है ना, कि पढ़ करके जो है ना वो उनके दिमाग के अंदर शैतान के वसवसे और बढ़ते चले जा रहे हैं, किताबों के अंदर उल्टी सीधी जो खराफात भरी हुई हैं और भरी जा रही हैं मुस्तकिल, तो उस मवाद के जरिए से औलाद जो है वो यानी शैतान का लुकमा बन रही है, ठीक है। तो दो चीजों का ख्याल रखना है पढ़ने के अंदर, प्ले टाइम, वो स्टडी टाइम के अंदर, नियत और कंटेंट, और कंटेंट के साथ साथ जो है वो उसको भी शामिल कर लें, मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो इस वजह से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, प्ले टाइम कम करना है और स्टडी टाइम बढ़ाना है, तो प्ले टाइम जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करके बिलाखिर बस वही 1 घंटे का करना है, और उसके अंदर भी ख्याल ये रखना है कि ये किसके साथ जाके प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ खेलेंगे वो उनकी सोहबत बन जाएंगे, उनकी सोहबत बन जाएंगे जिन लोगों के साथ जाके बच्चे खेल रहे हैं, तो सोहबत जो है ना ये अगर बुरी हो गई तो अब घर के अंदर आप जितना भी मेहनतें करते रहे बच्चों के ऊपर, सोहबत का असर गालिब आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान का निजाम ही ऐसा बनाया है, सोहबत गालिब आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है। अब आप ये कहें कि जी मेरी सोहबत तो इनको कई घंटों मिलती है, मैं तो होम स्कूलिंग करा रही हूँ तो मेरी सोहबत में घंटों रहते हैं ये, ठीक है, तो बाहर जो है वो अगर 2 घंटे ये बुरी सोहबत में रह गए तो वो गालिब कैसे आ जाएगी मेरी सोहबत के ऊपर? तो उसका जवाब ये है कि नंबर वन, अभी ये बच्चे हैं, मेच्योर नहीं हुए, पक्के नहीं हुए, पके नहीं है अभी ये, अभी ये कच्चे हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने घर के अंदर जो सोहबत दे रही होती है ना उनको, अपनी सोहबत, तो वहां पर हमारा अपना दीन थोड़ा सा कमजोर होता है, इतना पक्का हमारा मामला नहीं होता, इस वजह से हमारी सोहबत जो है ना वो उनके ऊपर इतनी ज्यादा गालिब नहीं आ पा रही होती है, ठीक है, हमारी सोहबत का असर इतना पक्का नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम अपने थोड़े से अपने अंदर ही थोड़े कच्चे होते हैं। जबकि जब ये बाहर जाके बुरी सोहबत में खेलते हैं ना, तो वो जो बुरी सोहबत वाले यानी बुरे लोग जो होते हैं, यानी गुनाहों में पड़े हुए हैं, मौसीकी और गालियां गलोच और, है ना, उनकी निस्बत हराम के साथ, शैतान के साथ, दुनिया के साथ इंतहाई पक्की निस्बत होती है, उनकी निस्बत गुनाह के साथ पक्की होती है। इस वजह से आपका बच्चा जब 2 घंटे भी उनकी सोहबत में रहेगा ना, तो उनकी सोहबत का असर इसके ऊपर गालिब आ जाएगा, इसके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनकी निस्बत दुनिया के साथ पक्की है, जबकि हमारी निस्बत दीन के साथ इतनी पक्की नहीं है, इस वजह से हमारे साथ अगर वो 10 घंटा भी गुजारेगा ना, फिर भी उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर जब बच्चा मेच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, पक्का हो जाए दीन के अंदर, बिल्कुल गैरतमंद मुसलमान बन जाएगा, अब जो है ना वो जरूरतन किसी बुरे बंदे की सोहबत में भी थोड़े वक्त रहेगा ना, तो असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो खुद मैच्योर हो जाएगा तब। अच्छा, किसी और ने लिखा था कि इज ड्राइंग एंड राइटिंग आल्सो ए हेल्दी हैबिट इफ किड्स वांट टू राइट एंड प्ले विद कलर्स और ओनली फिजिकल वंस? क्या मतलब प्ले विद कलर्स और ओनली फिजिकल वंस? नहीं, ड्राइंग एंड राइटिंग ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग के अंदर बस इतना है कि हदीस के अंदर जो जो जानदार हैं उनकी शक्ल बनाने की ममानियत है, ठीक है, चेहरा, तो उलमा ने फिर उसकी तफसीर क्या करी कि ऐसा चेहरा नहीं बनाना चाहिए कि जिससे कि वो एक जानदार शक्ल इख्तियार यानी शक्ल बन जाए ना। तो बेसिकली सिर्फ आईज आप ना ड्रॉ करवाएं, बच्चों से कहना है कि जी आईज ड्रॉ ना करें, नाक ड्रॉ ना करें, ठीक है ना। उससे कम दर्जे का अगर चेहरा बनाया है, बाल वाल बना दिए, सर बनाया है और दाढ़ी भी बना दी है, तो उसकी इजाजत है। बाकी बस सिर्फ आईज, बाकी सारी चीजें बना सकते हैं। तो ड्राइंग के अंदर तो कोई लिमिट नहीं है, आप माशाल्लाह अच्छी अच्छी ड्राइंग्स करें, बच्चों को करवाएं, राइटिंग्स, प्लेइंग, कलर्स, फिजिकल जो 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 आपके ब्लॉक्स वगैरह के गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बंदा इस तरफ देखना शुरू करे ना तो सब कुछ खुल जाता है। वो एक है ना कि आप किसी जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हो तो उस रास्ते के आपको कंकर भी नजर आते हैं, और जिस रास्ते के ऊपर आप चल ही नहीं रहे उस रास्ते के पहाड़ भी नजर नहीं आते, राइट? क्या मुश्किल बात है उसको समझना। तो इसी तरीके से जब आप स्क्रीन के रास्ते पे चल रहे हो ना तो आपको छोटी छोटी स्क्रीन भी नजर आएंगी, हाँ भाई ये भी कर लेती, ये भी देख लेती, ये भी कर लेता, ये भी कर लेती, राइट? और आपको चूंकि गैर स्क्रीन वाले रास्ते के ऊपर चल ही नहीं रही, तो इस वजह से समझ लो क्या करेगा बच्चा, बोर हो जाएगा, बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकल मरीज बन जाएगा, उल्टी सीधी बातें, ठीक है भाई। उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रास्ते के ऊपर बे इंतहा ऑप्शन मौजूद हैं, और बच्चे जो है वो यानी ना सिर्फ ये एंजॉय करते हैं बल्कि वो बर्बाद होने से बच जाते हैं, ठीक है। किसी और ने वैसे लिखा कि बिल्कुल जैसे मेरी बहन बोल रही है, बहनोई महरम होता है बहनोई महरम होता है जी, क्या कहते हैं एक शेर जो है तो मुझे कभी याद नहीं रहता कि क्या है वो, जो मिजाज यार में आए सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, है ना, जो चाहे बोल दो, जिसको महरम बोल दो, जिसको ना महरम बोल दो, इल्म की जरूरत क्या है इसके अंदर ना। बहरहाल तो जब तक बहन जिंदा है या तलाक ना हो, जब तक बहन जिंदा है या तलाक ना हो है तो उस वक्त तक जो है वो बहनोई महरम है। माशाल्लाह क्या बात है, मुझे बताना ही नहीं आ रहा कि कैसे ना महरम है, फिर ससुर क्यों महरम है अगर बहनोई ना महरम है। भाई कोई आप जब वुजू करती हैं तो वुजू के अंदर जो है वो यानी पैर को क्यों धोती हैं भाई, मतलब आप तो चप्पल पहन के रहती हैं घर के अंदर सारा दिन, ठीक है ना, और आपके जो है वो आप तो मोजे पहन करके भी रहती हैं माशाल्लाह, जब लास्ट टाइम नहाया था तो उसके बाद पैर जो है ना वो आपने धो लिए थे और उसके बाद क्रीम श्रीम लगा के मोजे पहन लिए थे। अब जब वुजू टूट गया, वुजू कैसे टूटता है, कोई पैर गंदे हो जाते हैं उससे वुजू टूटता है, राइट? तो वुजू टूट गया, राइट, नींद लग गई, री खारिज हो गई, इसकी वजह से वुजू टूट गया, तो अब जाकर के पैर धो रही है। भाई क्यों धो रही है पैर, पैर तो गंदे ही नहीं हुए थे, तो भाई क्यों धो रही है, इसलिए धो रही है ना कि अल्लाह का हुक्म है। अब क्यों भाई, क्यों का जवाब जो है वो बच्चों के साथ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी, अब यहाँ पर जो है ना वो बड़े अकलमंद मुसलमान लोग जो है वो अल्लाह ताला से कहें अल्लाह क्यों, है ना, क्यों भाई, वो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में क्यों की बात हो रही थी, ये कोई थोड़ी कि बड़ा बंदा जो है वो शरीयत में बोले क्यों, ठीक है। तो अब जो है वो ससुर क्यों महरम है और बहनोई क्यों महरम नहीं है, भाई अल्लाह का हुक्म है यार, सीधी सी बात है। अच्छा इसके ऊपर एक छोटी सी एक क्यों का है भी एक बड़ा मजे का जवाब, ठीक है, कि भाई बहनोई जो है तो उससे जो है वो शरीयत में शादी हराम है, ठीक है ना, क्योंकि दो बहनें एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक बहन से निकाह है और बहन जिंदा है तो उस वक्त तक बहनोई से तो निकाह नहीं हो सकता, तो शायद इस वजह से जो है ना वो शैतान ने दिलों में डाल दिमागों में डाल दिया है कि महरोई बहनोई महरम है, क्योंकि बहनोई से निकाह तो हो नहीं सकता जब तक बहन जिंदा है, और बहन जो है वो उसके निकाह में, या तो वो तलाक दे दे, है ना, तो फिर जो है वो आप बहनोई से निकाह कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप उसने आपकी बहन को तलाक दे दी, अब बहनोई से निकाह कर सकते हैं, या ये कि बहन मर जाए, ठीक है ना, तो फिर जो है बहनोई से निकाह हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है और निकाह में है उस वक्त तक तो निकाह नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जिससे निकाह नहीं हो सकता तो वो तो महरम है। तो भाई इसका बड़ा मजे का जवाब दिया हमारे घर वालों ने बोल के, ठीक है, क्या कि भाई एक औरत जो है वो कितने निकाह कर सकती है, एक औरत कितने निकाह कर सकती है एक वक्त में, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा निकाह कर सकती है एक औरत जो कि शादीशुदा है, ठीक है, एक ही कर सकती है ना। तो जब वो एक ही मर्द से निकाह कर सकती है तो बाकी जितने मर्द दुनिया में हैं वो तो उनमें से किसी से भी निकाह नहीं कर सकती, तो सारे महरम हो ना फिर, इसका मतलब है सारे दुनिया के मर्द महरम हो गए उसके लिए, क्योंकि वो किसी से भी निकाह नहीं कर सकती, ठीक है ना। जब तलाक उसका शौहर देगा या शौहर मर जाएगा तब वो दूसरे मर्दों से निकाह कर सकती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो एक 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 ऐसी एक लॉजिक सी थी, बाकी ये कि भाई अल्लाह का हुक्म है तो क्यों कुछ थोड़ी चलता है उसके अंदर। डो में फिगर्स बनाना सही है लाइक एनिमल्स, बस वही है कि फेस ना हो उसके अंदर, ठीक है, यानी आईज ना हो और नाक ना हो, बस बाकी जो शेप्स वगैरह हैं वो यानी बेहतर तो यही है। इसाजिस का अपना जो मिजाज है ना वो ये है कि ये जो बुतनुमा चीजें बन जाती हैं ना, चाहे एग्जैक्टली उसके अंदर आईज ना भी हो लेकिन बेसिकली एक बुत की फॉर्म तो बन गई है ना, ठीक है। तो बुतों की जो फॉर्म होती है उसको तो दिल तो नहीं मानता, बाकी फतवा भी शायद उसके खिलाफ ही है, ठीक है। तो डोज से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, प्ले डो जो होता है बच्चे उससे पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते हैं, हम तो देखते हैं हैरान होते हैं, उन्होंने डाइस भी दिए हुए होते हैं साथ साथ चीजें बनाने के लिए। तो एनिमल्स क्योंकि बुत है, बच्चों को बता दें कि बेटा ये तो बुत है, पुराने जमाने के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बताएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में वो इसी तरह के तो बुत होते थे, इसको उन्होंने लगा बुतखाने के अंदर रखा हुआ होता था, बच्चे समझ जाएंगे। उनके पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है ना कि वो एक ही चीज के ऊपर अगर आप उनको अच्छा ऑप्शन देंगे ना एक ही चीज के ऊपर वो जिद नहीं करेंगे। बोर्ड गेम्स सब खेल सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा बोर्ड गेम्स आ गए हैं जो हलाल बोर्ड गेम्स हों, कोई ऐसा मोनोपोली वगैरह जो है वो पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि बस माल पैसा मोनोपोली के अंदर। और फिर शतरंज है, शतरंज भी जो है वो उसकी भी जवाज नहीं है शतरंज, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं, कैरम है, लूडो, लूडो हराम नहीं है बाय द वे, कोई अगर किसी ने आपको कहा है कि लूडो का गेम जो है वो हराम है, नहीं, मैंने तहकीक भी करी हुई है, लूडो हराम नहीं, दूसरी शक्ल की चीज होती है जो हराम होती है। तो इस तरह के जो बोर्ड गेम्स होते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें ना लोग आपस में मिल करके घर वाले बातचीत करते हैं, मजा आता है, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप बोर्ड गेम्स खेलें जबकि आप बाहर जाकर के अगर नहीं खेल सकते हैं, बच्चे लड़कों को ज्यादा बाहर जाकर खेलने का शौक होता है। तो बहुत से दीनदार घरानों में स्टफ टॉयज होते हैं बच्चों के पास, क्या वो अलाउड है? क्लास किसी और ही से होते चली गई होगा, अरे यार इसको इसका कुछ गुरुवार है इस समझ में ले जाने का, लेकिन हाँ स्टफ टॉयज जो होते हैं वो भी अलाउड होते हैं, लेकिन बस वही आइस की हद तक इसको नहीं करते वो। ये अभी मुफ्ती साहब वाला एरिया शुरू हो गया, मुफ्ती साहब से बात कीजिए। बच्चों को ये बात कैसे समझाएं कि बजाय जो बच्चे गंदे नहीं लग रहे, यानी वो बैड वर्ड्स या बैड मैनर्स वाले नजर नहीं आ रहे, फिर उनके साथ नहीं खेलने की क्या वजह बताऊं? बैड मैनर्स और बैड वर्ड्स वाले नजर नहीं आ रहे, फिर उनके साथ खेलने की क्या वजह बताएं? उनके साथ नहीं खेलने की, स्पेशली जो बुरे एक्शंस अपेरेंटली आउटवर्डली बुरे एक्शंस नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको तो आप गंदा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से तो यानी गंदे बच्चे वाला वर्ड जो है ना वो तो अगर इस्तेमाल कर भी रही हैं, करना भी नहीं चाहिए, गंदे बच्चे हैं गंदे बच्चे हैं, इस तरह का वर्ड तो बच्चों के बारे में इस्तेमाल किसी के बारे में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा करके बच्चों को समझा देना चाहिए कि ये गंदा अमल कर रहे हैं, ये गंदे एक्शंस कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि ये गंदे लोग हैं, ठीक है। बहरहाल गंदे लोग गंदा बच्चा इस मानी में ही इस्तेमाल किया जाता है कि वो गंदे एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। मकसद खाली ये है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा करके बच्चों को ये बात समझा दें कि इंसान गंदा नहीं होता, इंसान का अमल गंदा होता है, अगर वो उस गंदे अमल को छोड़ दे, तौबा कर ले, तो वही इंसान जो है वो नेक बन जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि गंदा बच्चा गंदे लोग, ठीक है ना, ये वर्ड इस्तेमाल करना है तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, वरना जो है वो इस वर्ड को इस्तेमाल किए बगैर गंदे एक्शंस बताएं कि ये गंदे एक्शंस कर रहे हैं, इस वजह से हम उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई लोग जो है वो गंदे एक्शंस भी नहीं कर रहे, गंदे जुबान इस्तेमाल भी नहीं कर रहे तो अब उनसे कैसे रोकें, ठीक है ना। तो भाई उनसे रोकने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली जो है ना वो ऐसे ही नहीं, हर चीज आप हर काम डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, कुछ चीजें जो होती हैं उनके लिए आपको कुछ पस मंजर बनाना पड़ता है, कुछ बैकग्राउंड बनाना पड़ता है ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको बच्चों के साथ दो चीज, दो काम करने पड़ेंगे, ठीक है। एक काम तो ये करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी एक इंसान के जो जो माहौल होता है, जिस माहौल के अंदर वो रह रहा है, तो उस माहौल का उसकी सोच के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। उस माहौल का उसकी सोच के ऊपर असर पड़ता है। अब ये लोग जो हैं ये किस माहौल में रह रहे हैं, उमूमी तौर पर ये माहौल जिस माहौल में लोग आजकल रह रहे हैं, टेलीविजन का माहौल है, मीडिया के अंदर इंतहाई बुरी और गंदी बातें की जा रही हैं, ठीक है। स्कूलों के अंदर इंतहाई बेहयाई की हरकतें फैलाई चली जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग, हमको इन लोगों के बारे में या तो पता है कि इनके घर का ऐसा माहौल है, या अगर नहीं भी पता ना तो हमें अपनी हिफाजत के लिए केयरफुल रहने की जरूरत, ठीक है ना। कि अगर किसी बुरे सोच रखने वाले इंसान के साथ हमारा उठना बैठना होगा तो अगरचे के आउटवर्डली वर्ड्स गंदे ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजी गलत होगी, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बुरे आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ अपने बच्चों को खेलने की इजाजत दें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वी हैव टू बी केयरफुल। इसकी मिसाल हमारे हजरत कितना बयानात के अंदर इस तरह की कितनी बातें समझाई हैं कि भाई अगर 1000 कैंडीज हों और उन 1000 कैंडीज में से एक कैंडी के अंदर आपको पता चल जाए कि जहर है, एक कैंडी के अंदर जहर है, तो वहां पर आप क्या करेंगे अपने बच्चे को, जाओ बेटा खा लो अल्लाह तवक्कुल करके, बिस्मिल्लाह पढ़ना और जाके कैंडी खा लेना, अल्लाह तवक्कुल करना कैंडी खा लेना, या ये कि लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, राइट, हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट लाइफ, हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन, है ना। 999 कैंडीज जो है बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक में जहर है ना। तो पॉजिटिव अप्रोच रखो बेटा, अच्छा गुमान रखा करो बेटा, अल्लाह पे तवक्कुल करा करो बेटा, जाके खा लो इसमें से कैंडी। हरगिज नहीं, नहीं बेटा एक में तो जहर है ना, I cannot afford to risk your life. क्या ख्याल है, कोई माँ कहेगी नहीं I will do it, मैं अपने बच्चों को कहूंगी कि नहीं जाके बेटा खाओ अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, कैंडी है भाई, कोई ये नहीं है कि कोई उसकी जिंदगी के लिए लाइफ और डेथ का मामला है कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, भाई कैंडी है, नहीं खाएगा तो भी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर कोई रिस्क नहीं लेगा ना। तो भाई हम दुनिया की जिंदगी के लिए तो रिस्क नहीं लेते 1 out of 1000, और आखिरत की जिंदगी के लिए हम रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। हाँ बेटा अच्छी अप्रोच, अच्छा गुमान रखना चाहिए, आपको क्या पता कि उनके घर के अंदर बुरा माहौल है, आपको क्या पता कि उनकी सोच के अंदर जो है वो LGBT के कॉन्सेप्ट हैं, कि आपके उसके सोच के अंदर जो है वो फलानी चीज के हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके, आपको क्या पता, कोई बात नहीं, हैव अ गुड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, गो मेक फ्रेंड्स, है ना। उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि आखिरत की अहमियत नहीं है ना हमारे हमारे जहनों के अंदर। दुनिया की बड़ी अहमियत है, जिस्म की बड़ी अहमियत है, रूह की कोई अहमियत ही नहीं, कुछ पता ही नहीं हमें कि रूह क्या चीज होती है, उसकी कैसी हिफाजत करनी होती है, अगर वो बर्बाद हो जाए तो इंसान के साथ क्या होने वाला है। नहीं, ये सारी चीजें तो भाई मौलवियों के जैसे कहानियां हैं खाली, हमें क्या पता भी इन चीजों का, हमें क्या फिक्र करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को समझाने पड़ेंगे कि बेटा ये रूहानी मामले में जो है ना वो हम रिस्क नहीं ले सकते, जिस्मानी मामले में तो फिर हम ले लेंगे रिस्क, रूहानी मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते। पहली बात, इस तरीके से बच्चों की जहन साजी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यानी ग्राउंड वर्क है, ये ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा माओ को और बापों को भी, खाली माओ ने नहीं करना होता, बाप ने भी करना होता। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बच्चों के अंदर है ना कि बस खेलना, ये दिमाग में और कोई चीज सवार ही नहीं है सवाय खेलने के, भाई इसका इलाज करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये कुछ, ये जो खन्नास अंदर भरा हुआ है खेलने का, इस खन्नास को कम करें। अब उम्र बड़ी हो रही है, अब वो 5 साल वाली उम्र नहीं है, ठीक है ना, कि हर वक्त खेल, हर वक्त खेल, हर वक्त खेल, नहीं, दे नीड टू बी यू नो चैनल, उनके उनकी एनर्जीज को अब दूसरी तरफ चैनल करने की जरूरत है ना। इसी वजह से पीछे बात हो चुकी है कि स्टडी टाइम इंक्रीज होना है, उन्होंने इल्म हासिल करना है, उन्होंने रीड करना है, अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने पढ़नी है, उनको पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री के बारे में, उनको पता होना चाहिए हमारी ज्योग्राफी के बारे में, राइट। ये सारी चीजें किताबों के अंदर है, हर चीज तो नहीं उनको पढ़ के सुनाई जा सकती ना। स्कूल का टीचर जिसको आपने, बेशक होम स्कूलिंग के लिए आपने किसी टीचर को हायर किया हुआ है, वो तो ये सारी चीजें पढ़ के नहीं उसको बता सकती ना, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद रीड करनी है ना। तो रीडिंग के लिए टाइम कहाँ से आएगा जब हर वक्त वो खेलने की पड़ी हुई है उनको, हर वक्त आप उनको जो है वो नहीं बेटा हमने पढ़ लिख करके जो है ना वो हम खराब हो गए, तो आप भी पढ़ लिख के खराब हो जाएंगे, तो इस वजह से हम आपको जो है वो खेल कूद के अंदर लगाए रहते हैं हर वक्त। भाई आप पढ़ लिख के खराब इसलिए हुए क्योंकि एक तो नीयत का मसला था, हम यानी आप नहीं बल्कि मैं, हम पढ़ लिख के क्यों खराब हुए इतने ज्यादा, दुनिया परस्त क्यों बन गए, दुनिया की मोहब्बत क्यों हमारे अंदर आ गई, नीयत, हमारी नीयतें गलत थी और हमारा कंटेंट और मेथोडोलॉजी गलत था, इस वजह से पढ़ पढ़ करके जो है वो दुनिया के गुलाम बनते चले गए। लेकिन भाई जब आप अपनी औलाद को अच्छी सही नीयत और सही कंटेंट के जरिए से इल्म पहुंचाएंगी, वो कोई थोड़ी खराब होंगे, ठीक है ना, वो तो आलिम बनेंगे, वो तो आमिल बनेंगे, वो तो कवि मोमिन बनेंगे। खेल कूद के खाली कोई थोड़ी कवि मोमिन बन जाएंगे, यानी उनके मसल्स बन जाएंगे खेल कूद करके, उनको उनके उनके यानी कवा मजबूत हो जाएंगे उनके, तो कवाई खाली मजबूत करने वो वाले, फिजिकल कवाई खाली मजबूत करने, ठीक है। तो ग्राउंड वर्क करना है, और दूसरी चीज ये कि उनको इधर से वीन ऑफ करना है आहिस्ता आहिस्ता, नहीं भाई बहुत हो गया खेलना, खत्म, बस एक शाम के अंदर एक घंटा, शाम के वक्त जो है वो एक घंटा सवा घंटा ये आपका फिजिकल टाइम है, इसके अंदर आप डेंट पे लें या आप जो है वो पुशअप्स करें या आप जो है वो अपने भाई बहन के साथ खेलें या आप अपने जानने वाले जिन बच्चों के घरानों का हमें पता है, जिनके पेरेंट्स को हम जानते हैं, आप उन बच्चों के साथ एक डेढ़ घंटा खेल लें, बस नो मोर, राइट। अल्लाह ताला ने हमें खेलने के लिए नहीं पैदा किया यहाँ पर, ठीक है। सहाबा कराम इस तरह से खेलते नहीं थे जिस तरह से कि हमने अपने सर के ऊपर सवार किया हुआ है खेल को, ठीक है ना। लिमिट्स, खेल की लिमिट्स होती हैं, ठीक है ना। अल्लाह के जिक्र की लिमिट नहीं होती, बाकी हर चीज की लिमिट होती है, पता है ना ये बात अच्छी तरीके से, ठीक है। औलाद की तरबियत जो है ना, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, तो यानी हमारे यहाँ तो क्या है, बाहर निकल के जब तक दूसरे की चाकरी नहीं करेगी, दूसरे की नौकरी नहीं करेगी, उस वक्त तक बेकार है, है ना। एक तो हाउस वाइफ होना जो है ये कोई काम नहीं समझते हमारे यहाँ, भाई कपड़े धो रही है, वॉशिंग मशीन, खाना पका रही है, इतनी जो है वो बुजुर्गों की भी खिदमत कर रही है और मुस्तकिल जो है वो काम कर रही है, कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करो, जाकर के बाहर दूसरे की नौकरी करो। एक तो ये मुसीबत, घर में बैठने के लिए, घर में बैठने के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा, और दूसरे तो दूर की बात, अपने बुजुर्ग जो है वो अपनी औलादों के दिमाग खराब करके रख देते हैं अगर वो देखते हैं कि ये जॉब नहीं कर रही, राइट। खानदानों के बुजुर्ग सबसे आगे हैं इस काम के अंदर, जब तक लड़की जॉब नहीं करेगी उस वक्त तक तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई, कोई घर के अंदर वो क्या कर रही है, जॉब नहीं कर रही, घर की जॉब तो मैं नजर नहीं आती, राइट। तो पहली बात तो ये कि घर के अंदर रह करके 10,000 काम होते हैं करने के, घर के अपने काम होते हैं, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जब औलाद दे दी है तो इस औलाद को क्या वक्त नहीं चाहिए होता आपका, औलाद को आपका वक्त भी चाहिए होता है, औलाद को आपका इल्म भी चाहिए होता है, आपका इल्म आपके पास होगा तब आप औलाद को कुछ इंसान बना सकेंगी, औलाद को अच्छा मुसलमान बना सकेंगी, औलाद को अच्छा शहरी बना सकेंगी। माँ के पास कोई इल्म ही नहीं होता, इसको इल्म हासिल करने के लिए कहां से वक्त लेकर के आए, पीछे पड़े हुए होते हैं सारे के सारे, या तो खाना पकाती रहो खाली, या ये कि बाहर जाके जॉब करती रहो, कमा के लेकर के आओ, मेरे बेटे का जो है वो हाथ बटाओ कमाने, कमा कमा करके, ठीक है ना। औलाद की तरबियत क्या सोते में हो जाएगी, क्या कोई वही नाजिल होगी औलाद की तरबियत करने के लिए,
اس کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، اس کے لیے وقت نہیں پلان کرنا، اس کے لیے ٹائم نہیں لگانا اولاد کے ساتھ. بے تربیت کی اولاد اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اسکول جو ہے وہ ان کو انسان بنا رہے ہیں. اسکول تو ان کو حیوان بنا رہے ہوتے ہیں، خون خوار درندے بنا رہے ہوتے ہیں اسکول ان کو. اسکول کی اولاد کی تھوڑی ہے وہ اولاد، تو وہ آپ کی ہے، اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ان کے اوپر لگانے کا. تو بھائی گھر کے اندر تو ماں کے پاس جس کو کہتے ہیں نا محاورتاً سر کھو جانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتنا کام ہے اس کے پاس. لیکن یا تو یہ کہ باہر جا کے کام کرے گی، یا گھر میں بھی رہے گی نا تو صرف ڈسٹنگ کرتی رہے گی، یا جو ہے وہ کھانے پکاتی رہے گی، یا جو ہے وہ چیٹنگ کے اوپر دوسروں سے باتیں کرتی رہے گی، یا کوئی اور حرام کام کرتی رہے گی. اولاد کے لیے وقت کہاں سے لے کر کے آئے گی؟ یا یہ کہ آج کل ایک نیا فتنہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ جو لوگ پہلے جو ہے وہ خالی کھانے پکاتے تھے اپنے لیے، اب جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کر کے وہ ساری دنیا کے لیے کھانے بنا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. پیسہ ہی کیا ساری چیز ہے، پیسے سے انسان بنتا ہے بھائی. ضرورت کی حد تک یہ ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، پیسہ مقصد زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے ضروریات جو جینوئن ضروریات ہوتی ہیں وہ پیسے سے. اب آپ نے اپنی ضروریات کو ایکسپینڈ کر لیا. ہمارے یہاں کیا پاکستان کے اندر خصوصاً انڈیا میں بھی پیچھے نہیں ہے، کسی سے محبت ہو جائے نا، کسی سے عقیدت ہو جائے نا، اف اللہ، اس کے بعد پھر ان کے لیے تو مارکیٹ کے چکر کاٹ کاٹ کر کے جو ہے وہ تحفے پہ تحفے، تحفے پہ تحفے، دماغ خراب کیا ہوا ہے تو ہونے. اور اب جو آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی ہے تو آن لائن تحفے پہ تحفے خریدے چلے جا رہے ہیں، خریدے چلے جا رہے ہیں، اور لاد دیتے ہیں جا کر کے کسی کے اوپر جس سے کوئی عقیدت ہو جائے، محبت ہو جائے، تحفے لادتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. فری آتے ہیں یا تحفے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ آپ کا شوہر جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے وہ پیسہ کما رہا ہے، اور آپ جو ہے اس کو تحفوں کے اندر اڑا رہی ہیں. ان تحفوں سے کیا بھائی، تحفوں کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تحفہ دو اور آپس میں محبت بڑھاؤ، لیکن حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، حدود میں رہنی چاہیے چیزیں، تب فائدہ ہوتا ہے. اب اتنا تحفہ تحائف کے اوپر خرچہ کر رہی ہیں، تو اب یہ خرچہ جو ہے وہ آپ کی ضروریات زندگی، جو جینوئن جو اصل ضروریات زندگی تھیں، تو اس میں سے تو یہ پیسہ ادھر جا رہا ہے نا. پھر تو اب جو ہے وہ آمدنی بڑھاؤ، آمدنی بڑھاؤ. اب آمدنی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کماؤ کماؤ، باہر جا کے نہیں کما سکتے. دیندار ہو تو جی گھر میں بیٹھ کے کماؤ، رائٹ. دیندار ہو گئی، باہر نہیں جا کے کما سکتی، اب گھر میں بیٹھ کر کے کماؤ. اب گھر میں جب کمانے کے لیے اس کی اتنی ساری صلاحیتیں اور اتنا وقت لگے گا، اولاد کی تربیت کب ہوگی؟ دین کا علم کب حاصل ہوگا؟ بچوں کی ذہن سازی کب ہوگی؟ تو اب بچے جو ہے نا وہ پھر کیا بن کر کے نکلیں گے؟ وہی بن کے نکلیں گے جو کہ پورے معاشرے کے اندر بھرے ہوئے ہیں اس وقت، مار کٹائی کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے، دوسروں کو لوٹنے کھسوٹنے والے. پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے انسانوں سے. کون ان کی تربیت کرے گا؟ صرف مولوی صاحب کرنا ہے، مولوی صاحب نے کرنی ہے ان کی تربیت. مولوی صاحب کے تو قریب نہیں پھٹکتا ایسا بچہ جا کر کے پھر، right? تربیت تو ان کی گھر میں ہونی تھی نا، ماں نے کرنی تھی نا، باپ نے کرنی تھی نا، باپ نے سپورٹ کرنا تھا. اور اگر باپ نہیں بھی سپورٹ کرتا، کیونکہ یہ عورتوں کی کلاس ہے، تو اس میں ہم باپوں کو کیوں سنائیں، آپ کو سنائیں گے نا، آپ سن رہی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ماں نے کرنی ہے نا تربیت. اگر باپ ہیلپ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات، اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں کر رہا تو کیا اپنے بچوں کو جنگلی بنا دیں گی کہ میرا شوہر سپورٹ نہیں کرتا اس وجہ سے میں نے تو اپنے بچوں کو جنگلی ہی بنانا ہے؟ بھائی آپ کی اولاد ہے نا 70، آپ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تشبیہ دی ہے نا بھائی. آپ کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے نا، باپ کے پاؤں تلے تو جنت بھی نہیں رکھی. تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہنم کے حوالے کر دیں گی کیونکہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا اس وجہ سے؟ نہیں، ماں تو رحمت والی ہوتی ہے، مجسم رحمت ہوتی ہے. جس طرح دنیا کی تکلیف اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی تکلیف کیسے اپنی اولاد کے لیے برداشت کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ایک ایریا ہے جس ایریے کے اوپر جو ہے نا کام شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس کے اوپر کام تو دور کی بات، سوچ ہی نہیں ہے ہماری اس ایریا کے اوپر، سوچ ہی نہیں ہے اس ایریا کے اوپر ہماری. ठीक है, औलाद को इंसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ठीक है, इसके ऊपर मेहनत शुरू करनी है, वरना फिर आगे भी बाकी दुनिया वो अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह का काम, हमारा हमारा तो अपना घर आना हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने घर आने की फिक्र करनी है, अपनी औलाद की फिक्र करनी है ना, ये कुछ थोड़ी कि पड़ोस में देखते रहे, अच्छा पड़ोस में सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं तो मैं कैसे अपने आप अपने बच्चे को बचाऊं, कैसे, क्या आप बचा सकती हैं अगर आप अपनी मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, टाइम कहाँ से लेकर के आएंगी जब खराफात के अंदर अपना टाइम खर्च कर देंगी, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए टाइम भी नहीं आएगा और अल्लाह से दुआ मांगने के लिए दिल भी तैयार नहीं होगा अगर खराफात के अंदर फजूलियात के अंदर अपना वक्त जाया कर रही होंगी तो, अल्लाह से दुआ करनी है, फिर उसके बाद जो है वो दवा करनी है, यानी आमाल करना है, इल्म हासिल करना है, अमल करना है, ठीक है। थोड़ा सा किताब से भी पढ़ लेते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो। आगे फरमाया कुलना या नारुकूनी बर्दों सलामन अला इब्राहिम, दुनिया की आग मेरे इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, है ना, जो अल्लाह के खलील बन जाते हैं ना तो अल्लाह ताला एक हुक्म के जरिए से दुनिया की दहकती हुई आग को उनके लिए ठंडा कर देते हैं, सलामती वाला कर देते हैं। उसी तरीके से हम अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगा लेंगे ना तो माहौल की, मुआशरे की, जमाने की दहकती हुई जो ये आग है ना, हमारे लिए भी ये ठंडी हो जाएगी। और कैसी ठंडी होगी, सुने, ऊपर गुजर चुका है कि आग के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बर्दो सलाम होने की ये सूरत भी मुमकिन है कि आग आग ही ना रही हो बल्कि हवा में तब्दील हो गई हो, मगर जाहिर यह है कि आग तो अपनी हकीकत में आग ही रही, पूरी आग नहीं ठंडी हो गई, आग तो अपनी हकीकत में आग ही रही बल्कि हवा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आस पास के अलावा दूसरी चीजों को जलाती रही, आस पास की दूसरी चीजों को जलाती रही बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन रस्सियों में बांधकर आग में डाला गया था उन रस्सियों को भी आग ही ने जलाकर खत्म किया, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक तक कोई आंच नहीं आई। सुभान अल्लाह, मेरे जहन में ये बात नहीं थी जब आपको पूरा मैं लेक्चर दे रहा था औलाद की तरबियत, औलाद को बचाना है। अभी जब दोबारा से इसको आपके सामने पढ़ना शुरू किया है तो अल्लाह ने नुक्ता डाला कि जब हम अल्लाह की दोस्ती इख्तियार कर लेते हैं ना, पूरा मुआशरा गुनाह की आग में जल रहा हो, हत्ता कि हमारे अपने घर के दूसरे अफराद गुनाह के रास्ते में जल रहे हो ना, गुनाह की आग में जल रहे हो, अल्लाह ताला हमें इसी आग के बीच में सलामती अता फरमाएंगे, और करते हैं, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, अपने जानने वालों की मिसालें मौजूद हैं, किताबी बातें नहीं कर रहे खाली आपके सामने, किताबी बातें तो हैं सच्ची लेकिन मुशाहिदा भी इसके ऊपर गवाही दे रहा होता है, ऐसे अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करते हैं, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला को ट्राई करके तो देखें, लेट्स ट्राई आउट अल्लाह, लेट्स ट्राई आउट अल्लाह फ्रेंडशिप, फिर देखें इसकी हकीकत, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दोस्ती लगा के देखें जरा, ठीक है, हम दुश्मनी से तौबा ही नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की गुनाह से तौबा ही नहीं कर रहे, झूठ से और गीबत से और जुल्म से हम तौबा ही नहीं कर रहे तो अल्लाह की दोस्ती कैसे मिलेगी, झूठ के साथ तो अल्लाह की दोस्ती नहीं मिल सकती ना, अगर मिल सकती होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ नाऊज़ बिल्ला इतनी सारी दलीलें देने की क्या जरूरत थी कि भाई उन्होंने तो झूठ बोला ही नहीं, क्योंकि झूठ बोल करके तो कोई अल्लाह का खलील बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या बात साबित हो गई कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह की खलीली को भूल जाए, नहीं मिलने वाली हमें अल्लाह की खलीली, ठीक है। हाँ, तावील किसी वो तौरिया कर रहे हो किसी मजबूरी की वजह से, ठीक है ना, तो अल्लाह की खलीली मिल सकती है, ठीक है ना, या ये कि इसनाद मजाजी कर रहे हो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसनाद मजाजी किया था, ठीक है ना, यानी अकल इस्तेमाल करके कि भाई वो वजह बन रहा था इस बात की, इस वजह से उसने ये काम किया, अकल इस्तेमाल करिए ना, उसी तरीके से हम भी अकल इस्तेमाल करके कोई ऐसी बात कहें कि जिसमें कि इसनाद मजाजी हो, झूठ ना हो उसके अंदर, तब हमें अल्लाह की खलीली मिल सकती है। लेकिन हम तो सफेद झूठ बोलते हैं यार, हम तो आदतन झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम जमाने की आग से कैसे बचेंगे, अपनी औलाद को जमाने की आग से कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते, उसके लिए तो खलीली की जरूरत है, और खलीली हासिल करने के लिए सिर्फ गुनाहों से तौबा करनी है, उल्टा लटकने की कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए, आसमान से तारे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए, सिर्फ गुनाहों से तौबा करने की जरूरत होती है, और वो तो अभी बैठ करके कर लें भाई, नहीं अभी एक मिनट के अंदर आप अल्लाह ताला से तौबा कर सकती हैं, ठीक है, कोई हज उमरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, इतना आसान है अल्लाह ताला का दोस्त बन जाना। कहने का मकसद ये है, तारीखी रिवायात में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में 7 रोज रहे, और वो फरमाया करते थे कि मुझे उम्र भर में कभी ऐसी राहत नहीं मिली जितनी उन 7 दिनों में हासिल थी, ठीक है। जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जो हो जाती है ना इंसान के ऊपर, जब वो अल्लाह की खातिर कुर्बानियां दे रहा होता है, तो फिर उसके दिल को ऐसी राहत मिलती है कि उसके अलावा जब कुर्बानी के हालत में नहीं था तो उसके दिल ने ऐसी राहत को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर कैसी कैसी हमारे लिए, ठीक है, हम भी अगर अल्लाह के लिए अल्लाह की खातिर, अल्लाह को खुश करने की खातिर कुछ कुर्बानी दे लेना, अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा इत्मीनान, ऐसा सुकून और ऐसी साबित कदमी अता फरमाएंगे कि दुनिया वाले हैरान रह जाएंगे, यार ये कहाँ की मखलूक आ गई है, हम इतने परेशान हैं, हम इतने जो है वो यानी हर चीज हमारे खिलाफ जा रही है, और ये हमारे दरमियान रहती हुई इतनी पुरसुकून, इसके चेहरे से नूर टपकता है, इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है इसी गंदी दुनिया के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے نجات دے دی ان کو اور لوط علیہ السلام کو ایک زمین کی طرف کے جس کے اندر ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں ڈالی تھی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر نمرود کا غلبہ تھا یعنی عراق کی زمین نجات دے کر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اب کیا سارے کے سارے پودے اور سارے پھل جو ہیں وہ یہیں اگتے ہیں؟ امریکہ میں کوئی پھل نہیں اگتا، افریقہ میں کوئی پھل نہیں اگتا، آسٹریلیا میں کوئی پھل اور اچھے اجناس نہیں اگتے، سارے یہیں پر اگتے ہیں؟ نہیں، اگتے تو وہاں پر بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے شام سے لے جا کر کے پھر آسٹریلیا میں بوئے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ پھل اگنے شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو برکت سے یہاں پر کیا مراد؟ روحانی برکت۔ ایک تو یہ بھی کہ اس خطے کے اپنے اندر بھی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن للعالمین کا کیا مطلب؟ کہ یہاں کے جو پھل ہیں وہ ساری دنیا میں جاتے ہیں؟ اتنا تو خیر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شام کے پھل جو ہیں وہ ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اب تو ہر جگہ کے پھل ہر جگہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روحانی برکت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ چلایا ہے کہ جو کہ پھر پھیل گئے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولادیں جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہیں، عرب کے اندر بھی پھیلی ہیں اور دوسرے کبھی کوئی ادھر ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے۔ باطنی برکت تو یہ ہے کہ یہ زمین مخزن انبیاء ہے، یعنی خزانہ، خزانے کا جو سورس ہوتا ہے نا، انبیاء کے خزانے کا سورس ہے۔ بیشتر انبیاء علیہ السلام اسی زمین پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ برکتوں کا، ہدایتوں کا سبب بنے، لوگوں نے ان کو فالو کیا تو ان کی زندگی میں برکتیں آئیں۔ اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اعتدال، نہروں اور چشموں کی فراوانی، پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمولی نشو نما وغیرہ ہے، جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یہاں کے جو ہے وہ زیتون اسی ایریے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور زیتون ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے اندر فائدے ہی فائدے، حتیٰ کہ اس میں سے تیل بھی جو نکلتا ہے نا، تو وہ تیل بھی جو ہے وہ نیگیٹو کولیسٹرول ہے نا، اب ڈاکٹر لوگ موجود ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، یعنی باقی جو کیا کہتے ہیں سویابین تو خیر نہیں،
कुछ जो इन्होंने आटे तेल निकाल लिए हैं, ठीक है ना, तो उनसे जो है उनको उनके अंदर चीजें पकाएं तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वगैरह, ये सब सुना हमने। और इसके अंदर जो है ना ऑलिव ऑयल के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो उल्टा वो उसको खत्म करता है। मेरा वहबना लहू इसहाका व याकूब नाफिला, इस इलाके में एक तो ऑलिव और दूसरा तीन व तीन व जैतून, ठीक है, जो 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 इंजीर फिग, तो फिग के अंदर भी कितने सारे फायदे हैं। अच्छा फिर आगे आखिर में वहबना लहू इसहाका व याकूब नाफिला, इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेते हैं अच्छी क्लास में, टाइम तो अभी पूरा हो गया। तो हमने तोहफतन दिया उनको इसहाक और नाफिलतन दिया उनको याकूब, ठीक है। हबना हिबा, हिबा करना जो है उसका मतलब होता है तोहफा देना, और नाफिला का मतलब यह एडिशनल एक्स्ट्रा, जैसे नफिल नमाज जो होती है वो फर्ज के अलावा एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो याकूब हमने उनको हमारे कहते हैं स्लैंग में ग्रेवी, एक तो होता है ना असल सालन होती है, तो वो असल सालन जब खत्म हो जाती है ना तो फिर वो पुराने रेस्टोरेंट्स होते थे ना तो उनके अंदर भी ग्रेवी में थोड़ा सा और दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनको एक्स्ट्रा दे दिए, यानी हमने अता कर दिया उसको बेटा इसहाक उनकी दुआ व दरख्वास्त के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने बेटों की दुआएं करी थी, ठीक है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको उधर दिए और 14 साल के बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम उनको इधर शाम के इलाके में दिए, और उस पर ज्यादा दे दिया पोता याकूब अलैहिस्सलाम, यानी दुआ तो सिर्फ बेटे के लिए की थी, अल्लाह ने अपने फजल से बेटा बेटा भी दिया, फिर उससे पोता भी अपनी तरफ से जायद अता फरमा दिया, इसलिए उसको नाफिला कहा गया है, ठीक है। और इस जगह पर हमने जब पता नहीं कितने हफ्तों पहले या कम से कम 2 महीने तो हो गए जब हम इसका तर्जुमा पढ़ रहे थे, तो आपके सामने एक नुक्ता बयान किया था, वो हम आपसे पूछते हैं, किसको याद है वो नुक्ता, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे मिले और बेटे के बाद पोतों का भी जिक्र किया है ना, किसी और के बेटों का तो जिक्र करते हैं लेकिन पोतों का तो जिक्र नहीं होता ना भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का के जब इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है बेटे का, तो बेटे के साथ पोते का जिक्र जो है ना वो अक्सर होता है। तो एक नुक्ता दिल में डाला था अल्लाह ताला ने उस वक्त, तो आपके सामने बयान किया था, जो कि आप लोगों से ताल्लुक भी रखता था, रिलेटेड था खवातीन के साथ भी, अगर किसी को याद हो तो मेहरबानी फरमाए वरना क्लास खत्म कर देंगे। नोट्स वोट्स लिखते होंगे आपको, उम्मीद है पीछे नोट्स में देख लें अगर किसी ने लिखे हुए तो। उनका फैज उनकी औलाद से चला, माशा बिजनेस करना हलाल है ना ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बिजनेस करना हलाल है ना, आपको नहीं पता कि बिजनेस करना हलाल होता है, सारी दुनिया बिजनेस करती है, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने तिजारत करी, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा तिजारत करती थी, हलाल कैसे नहीं है भाई, सूद हराम है, जुल्म करना बिजनेस के अंदर किसी के ऊपर वो हराम है, लेकिन बिजनेस करना कोई थोड़ी हराम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी उनकी औलादों की सूरत में रंग लाई, इसका औरत से क्या ताल्लुक है, दोनों जवाब बिल्कुल सही है माशाल्लाह, ठीक है, कि उनका फैज उनकी औलाद से चला, ये डायरेक्ट मैसेज में लिखा था, बाकी लोग पढ़ नहीं सकते इस वजह से मैंने पढ़ लिया, और इन्होंने जो सामने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी उनकी औलादों की सूरत में रंग लाई, इसका औरत से क्या ताल्लुक है, दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए बात करनी चाहिए ना इसके अंदर ज्यादा, और भी कोशिश करें। जी ماشاءاللہ
کہ عورت جو اپنے گھر میں قربانی دیتی ہے وہ ضرور کام آئے گی. عورت بھی قربانی دیتی ہے تو اس کے مرید نہیں بنتے, نسلیں بنتی ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹو دا ڈاٹ. عورت کے مرید نہیں بنتے کہ جی لوگ آ کے بیعت کرنا شروع ہو گیا, اس کی جماعت بننی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا, بلکہ نسلیں بنتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مرید نہیں بنے, رائٹ, ابراہیم علیہ السلام کی جماعت نہیں بنی. ہر وقت سفر کرتے رہے, سفر انگریزی والا سفر بھی اور اردو والا سفر بھی, اردو کے مطابق سفر کرتے رہے ٹریول, اور انگریزی والا کبھی ادھر جا کے یہ والی تکلیفیں, کبھی ادھر جا کے وہ والی آزمائشیں, کبھی ادھر آزمائشیں, کبھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کبھی بیٹے کو قربانی دی جا رہی ہے, کبھی بیوی اور بالکل نیو بورن بچے کو جو ہے وہ وادی زی زرعن, ہے نا, غیر زی زرعن کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کر کے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کبھی جو ہے وہ مصر پہنچے تو وہاں پہ بادشاہ نے پکڑ لیا اور بیوی کو جو ہے وہ پکڑ کر کے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے نا, کبھی کچھ کبھی کچھ, ساری زندگی سفر کرتے رہے, جماعت بنا کر کے نظام نہیں بنا سکے, بنی نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی پہ اپنے خلیل کی جو ہے وہ کم ملک نہیں بن سکا, ٹھیک ہے نا, تو کیا ناکام ہو گئے؟ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مومن بنانا, ایمان والا بنانا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو مسلمان ہونے والے کچھ بندے ہی نظر نہیں آتے, الا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو کیا نعوذ باللہ ناکام ہو گئے, ان کی قربانیاں بے سود ہو گئیں؟ نہیں, بلکہ ان کی قربانیوں سے نسلیں بن گئیں اور دنیا کی ہدایت کا سبب بن گئے. اسی طریقے سے عورت قربانی دیتی ہے, اس کے مرید نہیں بنتے, اس کی جماعتیں نہیں بنتی, بلکہ اس کی نسلیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ دنیا والے شیطان کیا کہتے ہیں اس کو, تم یو آر ڈوئنگ اے تھینک لیس جاب. یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً, عورت کی جو جاب ہوتی ہے تو تھینک لیس جاب ہوتی ہے, کوئی تھینک ہی نہیں کرتا, ہے نا, کوئی اس کو جو ہے وہ واہ واہ ہی نہیں مل رہی ہوتی, کیوں قربانیاں دے رہی ہیں؟ پھر جائے باہر جا کر کے کمائے اور کما کر کے جو ہے وہ شاپنگ کرے جا کر کے, ہے نا, مزے کرے جا کر کے, انٹرٹین کرے اپنے آپ کو, گھر میں بیٹھ کر کے کیا قربانیاں دے رہی ہے؟ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں عورتوں کو بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. یہ شیطان یا تو ڈیلیبریٹلی یا بیچارے شیطان کا آلہ کار بن کر کے جو ہے اس طرح کی باتیں دوسرے عورتوں کو سناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نہیں, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دوستی لگانی ہے, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دینی ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح نوازیں گے, جیسے ان کو نوازا تھا نا, اسی ماڈل پر ہمیں بھی نوازیں گے. مؤمن عورت کا یہ جواب ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کہانیاں یہ بیڈ ٹائم سٹوری کے لیے نہیں بیان کیے ہیں, بلکہ اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں اپنے عمل کے اندر تقویت ملے, ہمیں ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے, ٹھیک ہے. کہ عورت جو خدمت کرتی ہے, یہ سیکریفائزز کرتی ہے, شادی کے بعد اس کا بدلہ اس کو اپنی اولاد میں ملے گا, ٹھیک ہے. جب اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ اپنی زندگی میں نہ نظر آئے, لیکن اولاد کی نیکی کی صورت میں ملتا ہے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. اور اگر بزنس آپ کو پھر کوئی بزنس والا سوال, چلے ٹھیک ہے, ابھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ نقطہ انشاءاللہ ریوائز ہو گیا, اس کی تکرار ہو گئی انشاءاللہ. یہ پھولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد بھی تھا. اور اس کو یاد جو ہے نا صرف تھیوریٹیکلی نہیں رکھنا ہے, بلکہ پریکٹیکلی, نہ صرف اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے, بلکہ آپ نے دوسری عورتوں کی ذہن سازی کرنی ہے. یہ جو دنیا والے ان کو ان کے یعنی حوصلوں کو پست کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ 42 عورتیں ہیں نا یہاں پر ماشاء اللہ, 42 کم از کم, باقی اگر دو مل کے سن رہی ہوں گی تو اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ان 42 خواتین نے اب اس علم کا حق ادا کرنا ہے کہ جو علم اور یہ سمجھ جو آپ کو عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اب اس کو جو ہے نا آپ نے اللہ کے بندیوں میں پھیلانا ہے, بلکہ بندوں میں بھی پھیلانا ہے تاکہ بندے بھی ٹھیک ہو جائیں, ان کی سوچ بھی ٹھیک ہو جائے, عورتوں کا دماغ خراب نہ کیا کریں وہ, ٹھیک ہے. ضرور سے یہ ہے علم کا, علم کا شکر جو ہے نا وہ ایسے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اگر کسی کو اشکال ہو ضرور سے اس کو کلیئر کریں, پوچھیں. عورت اگر بزنس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, نہ اپنی خواہش کے لیے کر سکتی, یا ضرورت نہ ہو تو نہ کرے.
आप ऐसा कीजिएगा आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, कि अगर अपनी ख्वाहिश के लिए बिजनेस करेंगी तो फिर नुकसान जो है ना वो नस्लों का हो जाएगा, ठीक है। तो नस्लों का नुकसान बर्दाश्त करके अपनी ख्वाहिश को पूरी करना है तो इंसान की मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत है, जरूरत तो भाई जरूरत के लिए तो बहुत सारी चीजें जो है पड़ती हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर खामखा की जरूरत ना बनाए ना चीजों को, जो जरूरत है, राइट। घर की जिम्मेदारियां जरूरत है, औलाद की तरबियत जरूरत है, इल्म हासिल करना जरूरत है, ये जरूरतें तो पूरी हो नहीं रही हैं, और जो है वो जॉब करना, बिजनेस करना, ठीक है ना, वो तो अल्लाह ताला के यहाँ फिर पकड़ हो जाएगी इन बातों की फिर, ठीक है ना। चले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।